डॉक्टर डेविड टर्नर, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सत्र दो, परिचय भाग दो। 2024 डेविड टर्नर और टेड हिल्डेब्रांट। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह सत्र दो है, जॉन के सुसमाचार का परिचय भाग दो, ऐतिहासिक और पाठ्य सामग्री। नमस्ते, हम अपने दूसरे वीडियो में फिर से जॉन के सुसमाचार पर वापस आ गए हैं। हमारे पहले वीडियो में आपको सुसमाचार के धार्मिक और साहित्यिक पहलुओं से परिचित कराने का प्रयास किया गया था, और अब हम दूसरा परिचयात्मक वीडियो बनाने के लिए वापस आ गए हैं। इस बार ऐतिहासिक मामलों पर, हमें जॉन का सुसमाचार कैसे मिला, पाठ की ऐतिहासिक सेटिंग, और आज हमें यह कैसे मिला, पाठ्य आलोचना प्रकार की चीजें। तो फिर हम जॉन के तालाब में उतर रहे हैं और उसमें से कुछ पानी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें डूब सकते हैं, यह बहुत गहरा हो जाता है। इसलिए हम आपको इस सुसमाचार के साथ उन चीजों से परिचित कराने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है, लेकिन हम शायद ही यह दिखावा कर रहे हैं कि हम वह सब कुछ शामिल कर रहे हैं जो कहा जाना चाहिए। इसलिए हम वही दोहराते हैं जो जॉन ने किताब के अंत में कहा था, कि जॉन के सुसमाचार के बारे में जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह हम नहीं कह सकते हैं, अन्यथा पूरी दुनिया उन चीजों से भर जाएगी जो जॉन के सुसमाचार के बारे में कही जानी चाहिए। जॉन, तो हम आज यहाँ समुद्र से कुछ बूंदे ले रहे हैं और उम्मीद है यह आपके जीवन और मंत्रालय में आपके लिए उपयोगी होगी। इसलिए जैसा कि हम जॉन की ऐतिहासिक सेटिंग और हर चीज के बारे में सोचते हैं, मैं जॉन के गॉस्पेल की ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर क्रेग ब्लॉमबर्ग की इस बेहतरीन किताब का उल्लेख करने से खुद को नहीं रोक सकता। क्रेग ने पढ़ा है और बताया है कि जॉन का कितना संबंध ऐतिहासिक परिवेश से है, और पुस्तक की कुछ ऐतिहासिक समस्याओं के बारे में बात की है। इसलिए यह ऐतिहासिक मामलों पर और जॉन के सुसमाचार के लिए एक महान समग्र संसाधन था। इसलिए पहली बात जो हम जॉन की ऐतिहासिक सेटिंग के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं, वह इसके लेखकत्व का मामला है, और जॉन के लेखकत्व पर चर्चा करने के लिए हम आंतरिक और बाहरी साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। बाहरी साक्ष्य का संबंध जॉन के सुसमाचार के बारे में उन लोगों से जो हम जानते हैं, जिन्होंने प्रारंभिक चर्च में इसके बारे में बात की है, से है। आंतरिक साक्ष्य मूल रूप से वह है जो पुस्तक स्वयं बताती है कि इसका लेखक कौन हो सकता है। इसलिए हम बाहरी सबूतों से शुरू करते हैं और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि प्रारंभिक चर्च में दूसरी शताब्दी की शुरुआत में आयरेनियस, अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट और पापियास जैसे लोगों ने, जैसा कि यूसेबियस में उद्धृत किया था, जिन्होंने चौथी शताब्दी के दौरान लिखा था, जॉन और के बारे में बात की थी। इसके लेखकत्व और इसकी सेटिंग के बारे में और यह कैसे अस्तित्व में आया। ये लेख विशेष रूप से पापियास के बारे में यूसेबियस द्वारा की गई टिप्पणी इस मायने में दिलचस्प है कि वे आम तौर पर जॉन को पश्चिमी एशिया माइनर के इफिसस शहर से संबंधित करेंगे, और हम इस बारे में बात करेंगे कि जॉन ने अपने जीवन और मंत्रालय का अंत कैसे किया। लेकिन पापियास का कथन विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि वह न केवल जॉन शिष्य को संदर्भित करता है बल्कि जॉन द एल्डर को भी संदर्भित करता है, और इसलिए पापियास द्वारा यह पता लगाने की कोशिश में हमें कुछ व्याख्यात्मक समस्याएं हैं कि क्या वह दो व्यक्तियों, दो अलग अलग जॉन, एक व्यक्ति के रूप में जॉन शिष्य और दूसरे व्यक्ति के रूप में जॉन बड़े के बारे में बात कर रहा था। हर कोई पापियास को उस नजर से नहीं देखता। हो सकता है कि वह एक ही व्यक्ति के बारे में केवल उन दो अलग अलग शीर्षकों का उपयोग करके बोल रहा हो, लेकिन यदि आप इसे और अधिक गहराई से समझना चाहते हैं तो यह कुछ घबराहट का विषय है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पापियास जॉन द एल्डर के बारे में वास्तव में क्या कह रहा था। यह मुझे एक गैर जोहानीन विशेषज्ञ के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कई अन्य चीजों के साथ साथ कुछ वर्षों से जॉन के साथ काम कर रहा है कि जॉन का सुसमाचार निश्चित रूप से कम अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित जॉन के शिष्य से जुड़ा हुआ है। 12. और क्या कोई बुजुर्ग जॉन या अन्य जोहानाइन सहयोगी थे जिन्होंने जोहानाइन समुदाय कहे जाने वाले केंद्र का गठन किया था? मुझे लगता है कि हम यह कहना चाहेंगे कि इस पुस्तक में शिक्षा 12 के सदस्य जॉन के माध्यम से फिल्टर की गई यीशु है मूल शिष्य, और यह उस परंपरा के अनुसार सुसमाचार है, वह परंपरा जो 12 में से एक प्रेरित यूहन्ना से आई है। आंतरिक साक्ष्य से हम जो सीख सकते हैं वह मूल रूप से यह है कि इस सुसमाचार का लेखक एक प्रत्यक्षदर्शी था, कोई ऐसा व्यक्ति जो 12 में से एक था, यीशु के मूल अनुयायियों में से एक था। जब वह कहता है हमने उसकी महिमा देखी, तो वह पुष्टि कर रहा है कि वह वही है जो वास्तव में वहां गया है और उन चीजों को देखा है जिनके बारे में वह बोलता है। निःसंदेह हमारे पास जॉन के सुसमाचार में प्रिय शिष्य के अन्य संदर्भ हैं, और प्रिय शिष्य वह है जो यीशु के सबसे करीब था और जो भोजन के समय यीशु के सीने पर लेटा था, जैसा कि जॉन 13 में लिखा है। हमें बाद में प्राचीन रोमन 3 काउच व्यवस्था, जिसे ट्राइक्लिनियम कहा जाता है, में इसका क्या अर्थ है, इसे खोलने का प्रयास करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि आंतरिक साक्ष्य, चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें, इस बात की पुष्टि करते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह पुस्तक लिखी है यीशु का करीबी निजी सहयोगी, घनिष्ठ मित्र और साथी। तो इस पुस्तक में हमारे पास क्या है? जैसा कि पुस्तक अध्याय 21 में समाप्त होती है, इस व्यक्ति प्रिय शिष्य का संदर्भ है, और प्रिय शिष्य पुष्टि करता है कि हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच है। वह वास्तव में कभी नहीं बताता कि उसका नाम क्या है, लेकिन वह कहता है आप जानते हैं कि मैं वहां गया हूं और मैंने वह किया है, और इसलिए मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो हम यहां यूहन्ना 21 पद 25 को देख रहे हैं। यीशु ने और भी बहुत से काम किए, यदि उनमें से हर एक को लिख लिया जाता तो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में भी उन पुस्तकों के लिए जगह नहीं होती जिन्हें लिखा जाना चाहिए। इसलिए वह यह स्पष्ट कर रहा है कि वह यीशु के प्रारंभिक मंत्रालय का हिस्सा था और वह जानता है कि वह क्या कहता है। चूंकि वह अपना नाम नहीं बताता है, मुझे लगता है कि हमारे पास वह है जिसे हम लेखकत्व की एक परोक्ष गवाही कह सकते हैं, कोई विशिष्ट गवाही नहीं जिसमें लेखक के नाम का उल्लेख हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का बहुत व्यापक संदर्भ हो जिसे थोड़ा गुप्त रूप से पहचाना जाता है। प्रिय शिष्य, और इसलिए जब किताब के लेखक की बात आती है तो हमें पूरी तरह से गुमनाम नहीं रहना पड़ता। हमारे पास एक प्रकार की योग्य गुमनामी है, और चर्च की प्रारंभिक परंपरा के माध्यम से यह कुछ हद तक परोक्ष साक्ष्य जो हमारे पास पुस्तक में है, कम से कम चर्च के बहुमत द्वारा जॉन के रूप में प्रिय शिष्य के संदर्भ को समझा गया है। एक शिष्य, एक सदस्य, मूल 12। जब हम जॉन के सुसमाचार के लिए लक्षित दर्शकों के बारे में सोचते हैं, तो हाल ही में सुसमाचार अध्ययनों में इस बारे में एक बड़ी बहस हुई है कि क्या जॉन को समग्र रूप से सुसमाचार के लिए लिखा गया था, व्यापक या संकीर्ण दर्शकों के लिए लिखा गया था। मुझे लगता है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल विद्वत्ता के अनुशासन के दृष्टिकोण से, जिसे रिडक्शन आलोचना के रूप में जाना जाता है, यह सोचना क्रोध बन गया है कि गॉस्पेल के लेखकों ने अपनी उन परंपराओं को संशोधित या संपादित किया है जो उनके लिए उपलब्ध थीं। उन्हें इस तरह से बनाया गया था जो विशेष रूप से उनके संबंधित समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ हद तक ये संबंधित समुदाय इस बात के लिए मध्यस्थ बन गए कि हम सुसमाचार की सामग्री को कैसे समझेंगे। तो यह सिद्धांत कि सुसमाचार की सामग्री समुदाय पर आधारित थी एक प्रकार का दुष्चक्र बन गया, और रिचर्ड बालकोम्बे जैसे लोगों ने, जैसा कि हम एक क्षण में देखेंगे, सुसमाचार के प्रति उस दृष्टिकोण के खिलाफ बात की है। लेकिन एक पल के लिए आइए जॉन के दर्शकों के बारे में आज की कुछ सोच के बारे में सोचें। प्राचीन परंपराएं, जिनका हमने पिछली स्लाइड में उल्लेख किया था, जॉन को इफिसस में या उसके निकट रखने की प्रवृत्ति रखती हैं, और उनके मंत्रालय का अंत वहीं किया गया था, इसलिए उनकी सामग्री उस विशेष क्षेत्र के चर्च के लिए लिखी गई थी। बेशक यह उस समय के बाद चर्च में अधिक व्यापक रूप से प्रसारित हुआ जब यह मूल रूप से इफिसस में केंद्रित था। जे लुईस मार्टिन और अन्य का सिद्धांत है कि जॉन ईसाइयों के लिए लिखा गया था, विशेष रूप से यहूदी ईसाइयों के लिए, जिन्हें प्रवासी भारतीयों के आराधनालयों के साथ अपनी संगति बनाए रखने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यीशु के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उन्हें आराधनालय से बाहर निकाला जा रहा था। इसलिए मार्टिन की राय थी कि जॉन 9 जैसे ग्रंथ, जो उस अंधे व्यक्ति को संदर्भित करते हैं जिसे यीशु ने ठीक किया था, और 12:42 जैसे ग्रंथ, जो उन लोगों को संदर्भित करते हैं जिन्होंने यीशु में विश्वास किया था लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे प्रकट नहीं होने देंगे, क्योंकि वे यदि यह ज्ञात होता तो आराधनालय से बाहर निकाल दिया जाता, और 16 में, जहां यीशु ने शिष्यों को चेतावनी दी कि उन्हें सताया जाएगा और उनके उत्पीड़न में उन्हें आराधनालय से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मार्टिन का मानना था कि जॉन ईसाइयों के इस समूह के लिए लिखा गया था, जिन्हें अनिवार्य रूप से यीशु में उनके विश्वास के लिए सताया जा रहा था, जिन्हें दुनिया के पश्चिमी एशिया माइनर भाग के सभास्थलों से बहिष्कृत किया जा रहा था। एक वर्तमान सोच जो इसके विपरीत जाती है वह रिचर्ड बा ओखम की एक पुस्तक पर आधारित है जिसका शीर्षक है द गॉस्पेल्स फॉर ऑल क्रिश्चियंस, और बाखम ने पुस्तक का संपादन किया है और इसका पहला अध्याय लिखा है। उनके लेख को सभी ईसाइयों के लिए सुसमाचार कहा जाता है। पुस्तक का नाम उनके लेख से लिया गया है, और बालकॉम ने कहा है कि यह विचार कि गॉस्पेल छोटे छोटे समुदायों के लिए लिखे गए थे और फिर जिन छोटे छोटे समुदायों को सिद्धांतित किया गया वे पुस्तक की व्याख्या का संपूर्ण आधार बन गए। दुष्टकृ और इसलिए परिकल्पना की पुष्टि डेटा द्वारा की जाती है क्योंकि डेटा परिकल्पना की पुष्टि करता है, और इसलिए यह वह है जिसे मैं हाल ही में पुष्टिकरण पूर्वाग्रह के रूप में सुन रहा हूँ कि यदि आपके पास किसी चीज के बारे में कोई सिद्धांत है तो आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसे साक्ष्यों द्वारा सिद्ध करें, क्योंकि आप जिस सिद्धांत के बारे में सोच रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए आप साक्ष्यों को सख्ती से उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इसलिए बॉखम ने इस पुस्तक में इस बारे में कुछ साक्ष्य एकत्र किए हैं कि सभी 4 गॉस्पेल क्यों लिखे गए थे, व्यक्तिगत सेल के लिए नहीं, इस छोटे से शहर या इस छोटी सी जगह में समूह या रोमन साम्राज्य के भीतर ईसाइयों का एक विशेष वर्ग, लेकिन ये गॉस्पेल सभी ईसाइयों के लिए लिखे गए थे, और इसलिए गॉस्पेल के मतभेदों को दर्शकों के बीच मतभेदों से नहीं समझाया गया है बल्कि मतभेदों से समझाया गया है। गॉस्पेल को लेखक के व्यक्तिगत तनाव द्वारा समझाया गया है जो वह बनाना चाहता था, इसलिए तब फोकस व्यक्तिगत लेखक के अनुमान पर अधिक होता है कि चर्च को समग्र रूप से क्या चाहिए, और गॉस्पेल तब अन्य प्रकाशनों के बारे में कुछ जागरूकता के साथ लिखे गए थे लेकिन दर्शकों के एक छोटे से हिस्से के लिए नहीं बल्कि उनके लिए लिखे गए थे। लेखक ने क्या सोचा कि चर्च को समग्र रूप से सुनने की आवश्यकता है, तो यह इस विषय पर एक अच्छी किताब है और इसमें कुछ अन्य दिलचस्प लेख भी शामिल हैं कि रोमन साम्राज्य में प्राचीन साहित्य कैसे प्रसारित किया गया था और कैसे गॉस्पेल को न केवल एक छोटे से क्षेत्र में बल्कि पूरे साम्राज्य में व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकता था। काफी तीव्र समय, तो बॉखम का तर्क एक तरह से मार्टिन और अन्य लोग जॉन के लिए एक संकीर्ण दर्शक वर्ग के बारे में जो कह रहे थे उसके विपरीत है। एक बात जिस पर हम सभी ध्यान देंगे वह यह है कि जॉन का सुसमाचार एक बहुत ही यहूदी सुसमाचार है। इसमें कई यहूदी विशेषताएं हैं। हम शायद कुछ लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे कि जॉन गॉस्पेल में सबसे अधिक यहूदी है और फिर हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, नहीं, मैथ्यू गॉस्पेल में सबसे अधिक यहूदी है। इसलिए मुझे नहीं पता कि हम उस कठिनाई को कैसे हल करेंगे। उन दोनों के पास यह दिखाने के अपने अलग अलग तरीके हैं कि यहूदी धर्म ने यीशु को कैसे प्रभावित किया और यीशु इसराइल के मसीहा कैसे थे, और मुझे नहीं पता कि हमें अब उस प्रश्न पर बहस करने की भी आवश्यकता है। लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जॉन में बहुत सारी यहूदी विशेषताएं हैं, और जॉन लगातार संकेतों या उद्धरणों के माध्यम से पुराने नियम का उल्लेख कर रहा है। जॉन के सुसमाचार की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से यीशु को उत्पत्ति अध्याय एक से जोड़ती है, स्पष्ट रूप से यीशु को मूसा से जोड़ती है, स्पष्ट रूप से जॉन द बैप्टिस्ट यीशु के अग्रदूत मलाकी और यशायाह अध्याय 40 से जोड़ती है। इसलिए हमारे पास इस सुसमाचार में कई पुराने नियम की जड़ें हैं जो लाभ नहीं कहा जा सकता। यह भी संभव है कि जॉन ने कुछ देर बाद लिखा, यह सर्वसम्मत परंपरा है, और जॉन को शायद सिनोप्टिक गॉस्पेल के पूरक के रूप में लिखा गया था। ऐसा लगता है कि हमें न केवल यह विचार है कि यह केवल अनुमान लगाने से सच होगा, बल्कि जॉन के सुसमाचार की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में एक बयान से भी, जिसके बारे में हम थोड़ा और अधिक विस्तार से बात करेंगे। इसलिए आज अधिकांश विद्वान यह सोचेंगे कि जॉन का सुसमाचार पहली शताब्दी के अंत में लिखा गया था, शायद सामान्य युग ईपू के 90 के आसपास। कुछ लोग इसे थोड़ा बाद में लिखेंगे, एक विचारधारा है, उनमें जॉन एटी रॉबिन्सन भी शामिल हैं, जिन्होंने यह तर्क देने की कोशिश की कि जॉन 70 से पहले लिखा गया था। जॉन को बहुत पहले डेट किया गया था, उस बहस में बहुत से लोगों ने उनका अनुसरण नहीं किया था। हमारे पास एक प्रकार का टर्मिनस एडक्वेम है, जो एक ऐसा बिंदु है जिस पर जॉन को इस तिथि तक लिखा गया होगा, क्योंकि हमारे पास नए नियम के समय का सबसे पहला दस्तावेज P52 दिनांकित था, आमतौर पर 125 ईस्वी के आसपास। कुछ ने पहले दिनांकित किया, कुछ ने थोड़ा बाद में दिनांकित किया, लेकिन मुझे लगता है कि 125 इसके लिए काफी सुरक्षित तिथि है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जॉन लिखा गया था और उससे कुछ दशक पहले अस्तित्व में था, अन्यथा इसकी कोई पांडुलिपि नहीं होती जो बाद के समय में लिखी गई होती। तो दूसरी शताब्दी के मध्य तक जॉन काफी प्रसिद्ध हो गया था। तो हम जॉन को सिनोप्टिक गॉस्पेल से कैसे जोड़ते हैं? तो हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कैसे है कि जॉन सिनोप्टिक से इतना अलग है, और यह कैसे है कि जॉन कुछ मायनों में उनके समान है? तो जॉन और सिनोप्टिक्स के बीच सामान्य सामग्री के क्षेत्र क्या हैं? उनकी ऐतिहासिक रुचि का स्तर क्या है? भूगोल के प्रति उनका रुझान क्या है? उन्हें साहित्य के रूप में कैसे संरचित किया गया है? वे कहानी कैसे बताते हैं? और अंततः हम उनके धार्मिक महत्वों को कैसे देखते हैं और वे कैसे भिन्न हैं? तो मैं अब आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप वीडियो में देख पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस सामग्री तक आपकी पहुँच इस तरह से होगी कि आप कर पाएंगे इसे प्रिंट में देखें और इसे बेहतर ढंग से देख पाएंगे। इसके लिए क्षमा करें, लेकिन इससे आपको बहुत अधिक बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए चार सुसमाचारों की संरचना को एक तुलनात्मक चार्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जब हम उस तरीके के बारे में सोचते हैं जिसमें उन्हें रखा गया है, तो वे स्पष्ट रूप से यीशु के सार्वजनिक मंत्रालय और यरूशलेम में यीशु के पुनरुत्थान के जुनून और उसके बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बात करते हैं। इसलिए चाहे हम मार्क, मैथ्यू, ल्यूक या जॉन के बारे में बात कर रहे हों, हमारे पास गैलिलियन मंत्रालय, एक सार्वजनिक मंत्रालय और यरूशलेम में एक समय के साथ साथ यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद जो हुआ उसके पुनरुत्थान में यह सामान्य रुचि है। मामले की तह तक जाने के लिए यह अगली स्लाइड, जो मुझे लगता है कि आप देख सकते हैं, फिर से पिछली स्लाइड देखने के लिए अपनी लिखित सामग्री से परामर्श लें। इसके बारे में हम जो नोट कर रहे हैं वह यह है कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल मैथ्यू, मार्क और ल्यूक, साथ ही जॉन, दोनों के पास गैलील के बारे में और यरूशलेम के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। अंतर यह है कि सिनॉप्टिक परंपरा में यीशु को गलील में एक मंत्रालय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो उसके मंत्रालय के अंत में यरूशलेम की यात्रा की ओर ले जाता है और फिर पुनरुत्थान के बाद गलील में शिष्यों से मिलता है। हालांकि जॉन के सुसमाचार में चीजें काफी अलग हैं। जॉन के सुसमाचार में अध्याय 2 में बहुत पहले ही यीशु गलील से यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए, फिर गलील लौटते हुए, फिर यरूशलेम लौटते हुए और आगे पीछे होते हुए दिखाई देते हैं। चीजें बिल्कुल पहले जैसी नहीं चल रही हैं। यीशु जॉन के सुसमाचार में बहुत आगे पीछे यात्रा कर रहे हैं। हम इस बारे में एक बात पर ध्यान देते हैं जो काफी आश्चर्यजनक है, वह यह है कि सिनॉप्टिक परंपरा यीशु के मंत्रालय के अंत के करीब घटना को बताती है। जब वह यरूशलेम में आता है तो उसके पास मंदिर की घटना होती है जहां वह पैसे बदलने वालों को साफ कर देता है। वह घटना जॉन के गॉस्पेल की शुरुआत में घटित होती है। गॉस्पेल के विद्यार्थियों के बीच इस बात पर बहुत बहस होती है कि यह कैसे काम करता है और कैसे समझें कि यह वास्तव में कब हुआ था। इवेंजेलिकल जो मानते हैं कि ऐसा हुआ था, वे इसके बारे में दो अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं, या तो यह सोचते हुए कि यीशु ने वास्तव में मंदिर को दो बार साफ किया था। मुझे लगता है कि अधिक लोग सोचेंगे कि उसने ऐसा केवल एक बार किया है। उनमें से बहुसंख्यक कहेंगे कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल इसके ऐतिहासिक मूल को संरक्षित करते हैं और जॉन ने इसे यीशु के मंत्रालय में एक विषयगत सामयिक प्रकार की चीज के रूप में रखा है ताकि उनके मंत्रालय में यहूदी नेताओं के साथ यीशु की समस्याओं को दिखाया जा सके और उस घटना को अंत तक टालना नहीं। यह एक बहस का मुद्दा है। हम यहाँ इस बिंदु पर केवल इस मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जॉन का सुसमाचार किस तरह से कहानी कहता है, न कि उस सटीक तरीके के बारे में जिस तरह से हमें इस विशेष मामले को समझने की आवश्यकता है। इसका सार यह है कि जॉन का भूगोल पर ध्यान सिनोप्टिक्स से बहुत अलग है। जॉन में यीशु शुरू में यरूशलेम में थे, गलील वापस जाते हैं, यरूशलेम वापस जाते हैं, गलील वापस जाते हैं, फिर यरूशलेम वापस जाते हैं और फिर अंत में वापस आने से पहले जॉर्डन के पूर्व में एक संक्षिप्त अंतराल लेते हैं लाजर को ठीक करने के लिए और जिसे हम सिनोप्टिक परंपरा में आमतौर पर विजी प्रवेश कहते हैं, उसे पाने के लिए। तो जॉन का कितना भाग वास्तव में सिनोप्टिक्स में पाया जाता है? हम आम तौर पर सुनते हैं कि जॉन का केवल 10% सिनोप्टिक परंपरा में पाया जाता है। यह काफी हद तक एक तयशुदा बात है जिस पर हर कोई सहमत होगा। तो इसे दूसरे तरीके से कहें तो जॉन के कुल 778 छंदों में से केवल 170 में ऐसी सामग्री है जो सिनोप्टिक्स के साथ ओवरलैप होती है। यहाँ हम सटीक शब्दशः शब्दों के समझौते के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, बस इस अर्थ में ओवरलैप कर रहे हैं कि वे एक ही तरह की सामग्री को कवर कर रहे हैं और आपको एक ही कहानी बता रहे हैं। इसलिए अगर हम यहाँ उस सामग्री को पढ़ने के लिए थोड़ा समय लेंगे जो जॉन और सिनोप्टिक्स में ओवरलैप होती है, तो जॉन बैप्टिस्ट की यीशु के प्रति गवाही सिनोप्टिक्स की तुलना में जॉन में बहुत अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सार बहुत बहुत समान है। तो यूहन्ना अध्याय 1 श्लोक 19 से 28 में हमारे पास यीशु के प्रति यूहन्ना की गवाही का संदर्भ है। हमारे पास जॉन में, बाद में सिनोप्टिक्स में यीशु द्वारा मंदिर को साफ करने का मामला है, लेकिन यह सामग्री आम है। अधिकारी के बेटे का ठीक होना संभवतः जॉन 4 में वही घटना है जैसा हम सिनोप्टिक्स में पाते हैं। अध्याय 6 में यीशु द्वारा भीड़ को खाना खिलाना एकमात्र चमत्कार है जो चारों सुसमाचारों में घटित होता है। उसके ठीक बाद यीशु का पानी पर चलना मैथ्यू और ल्यूक में भी पाया जाता है। यहूदी नेताओं द्वारा यीशु को मारने की साजिश स्पष्ट रूप से सिनोप्टिक परंपरा में पाई जाती है। बेथनी में यीशु का अभिषेक, जिसे हम विजी प्रवेश कहते हैं, पाम संडे, यीशु द्वारा पतरस के इनकार की भविष्यवाणी, यीशु को धोखा दिया जाना और गिरफ्तार किया जाना, महायाजक के सामने यीशु, पतरस द्वारा यीशु को नकारना, जबकि यह सब चल रहा था, यीशु का पीलातुस के सामने आना, पीलातुस यीशु को मौत की सजा सुनाना, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना और मरना, स्पष्ट रूप से सभी चार सुसमाचारों में उनका दफनाना, उनका पुनरुत्थान और उनके पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के सामने प्रकट होना, ये सभी बातें आम हैं। मुझे माफ करें, मुझे ड्रिंक लेनी होगी। तो यह सारी जानकारी जो हमने अभी कुछ समय पहले नोट की थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई हमें दिखाती है कि यद्यपि जॉन काफी अलग है, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो जॉन के पास सिनोप्टिक परंपरा के साथ समान हैं। इस पर प्राचीन काल में भी बहस हुई थी और यह ज्ञात था, इसलिए हमारे पास दूसरी शताब्दी के अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट का यह प्रसिद्ध उद्धरण है, जिसके बारे में चौथी शताब्दी में यूसेबियस ने लिखा था और इसका अनुवाद इस तरह किया गया है, जॉन सबसे अंत में बाहरी तथ्यों के प्रति सचेत है, सिनोप्टिक गॉस्पेल में निर्धारित किया गया था, मैंने सिनोप्टिक शब्द जोड़ा, यह उसका संदर्भ है, यह स्पष्ट रूप से वह शब्द नहीं है जिसका उपयोग क्लेमेंट ने किया था, बाहरी तथ्य गॉस्पेल में निर्धारित किए गए थे, उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया था और दैवीय रूप से आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने एक आध्यात्मिक सुसमाचार की रचना की। जिस तरह से दो सुसमाचारों का वर्णन किया गया है उसके लिए अनुवाद बाहरी और आध्यात्मिक शब्द पर आधारित है। क्लेमेंट की मूल भाषा मूल रूप से दैहिक और वायवीय के बीच अंतर की बात करती है, यानी बाहरी या बाहरी चीजें बनाम आंतरिक या आध्यात्मिक चीजें। इंजील परंपरा में हम में से बहुत से लोग अलेक्जेंड्रिया और मिस्र से निकले सभी व्याख्या शास्त्रों से बिल्कुल खुश नहीं हैं, जैसे कि ओरिजन और क्लेमेंट और उनके जैसे लोग, और हम में से कई एंटीओचियन प्रकार को पसंद करेंगे, क्रिसोस्टॉम जैसे लोगों की व्याख्या, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ ऐसी चीज पर अपनी उंगली रखी है जिसे हर किसी को स्वीकार करना होगा, चाहे आपको शब्दावली पसंद हो या नहीं। तो शायद आप दैहिक, बाह्य, शारीरिक बनाम आंतरिक, आध्यात्मिक के बीच अंतर की बात करके जॉन की तुलना सिनोप्टिक्स से नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपको शर्तों के बारे में सोचने का यह तरीका पसंद न हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें सोचने और विचार करने की जरूरत है कि क्या इसकी यह ऐतिहासिक सेटिंग सच है और जॉन वास्तव में सिनोप्टिक के पूरक के रूप में लिख रहे थे। परंपरा वह स्पष्ट रूप से उस प्रकार के परिप्रेक्ष्य को दोबारा दोहराना नहीं चाहता था। तो जॉन अधिक चयनात्मक है, जाहिर है, सिनोप्टिक परंपरा की तुलना में यीशु और जिन लोगों से वह मिला था उनके जीवन से विशिष्ट चीजों को चुनने में इस विचार को बढ़ावा देने के लिए कि लोगों को उसके संकेतों को देखने, उस पर भरोसा करने और आने की जरूरत है, उस पर विश्वास करके जीवन। निःसंदेह यह सिनोप्टिक्स की तुलना में अधिक संकीर्ण होगा, जिसका ध्यान ईश्वर के राज्य और व्यापक चीजों और यीशु की शिक्षा पर अधिक है। इसलिए जब हम जॉन के सुसमाचार को देखते हैं और इसे आध्यात्मिक सुसमाचार के रूप में सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तुरंत इससे प्रभावित हो जाते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक शब्द का उपयोग करना चाहें या नहीं, जिस तरह से जॉन शुरू करते हैं। प्रस्तावना और उत्पत्ति की पुस्तक में यीशु को निर्माता के रूप में जोड़ता है। जिस तरह से जॉन के गॉस्पेल में ऐसी भाषा का उपयोग शुरू होता है जो प्रकृति में रूपक है, निकोडेमस को यह समझने में कठिनाई होती है कि यीशु का क्या मतलब है जब वह उससे कहता है कि उसे पानी और आत्मा से पैदा होने की जरूरत है। अध्याय दो में निकुदेमुस से भी पहले यीशु ने अपने शरीर के विनाश की बात करते हुए मंदिर के विनाश की बात कही थी। जॉन चार में जब यीशु उस महिला से कुएं पर मिलते हैं तो वह उसे जीवित जल प्रदान करते हैं। निःसंदेह वह तब तक यह नहीं समझ पाती कि यह कैसे काम करता है जब तक कि वह उसे अधिक ध्यान से न समझाए। तो जॉन द्वारा रूपक भाषा का उपयोग, उसके प्रतीकों का उपयोग और उसके जानबूझकर दोहरे अर्थ जो वह उपयोग करता है, मुझे लगता है कि क्लेमेंट शायद यही हासिल करने की कोशिश कर रहा था जब उसने जॉन के बारे में आध्यात्मिक सुसमाचार के रूप में बात की थी। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही उत्तेजक टिप्पणी है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि जॉन के सुसमाचार में क्या चल रहा है, और हमें यह समझाने में मदद करती है कि जॉन कई मायनों में सिनोप्टिक्स से कितना अलग है। इसलिए यदि हम अंतरों में से एक पर आगे बढ़ते हैं, जो कि भूगोल का क्षेत्र है, और जॉन के सुसमाचार और भूगोल पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, तो मुख्य अंतर यह है कि यीशु गलील और के बीच कई बार आगे पीछे होते हैं। जॉन में जेरूसलम, जिस तरह से इसे सिनोप्टिक गॉस्पेल में प्रस्तुत किया गया है, उसके विपरीत। इसके अलावा जॉन के पास उन विभिन्न यहूदी दावतों के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है जिनमें यीशु अपने सुसमाचार में शामिल होते हैं, और इससे वह लगभग अनजाने में हमें यह बताने के लिए प्रेरित होता है कि यीशु का मंत्रालय 3 साल लंबा था, क्योंकि सुसमाचार में 3 अलग-अलग फसह हैं जिनमें यीशु शामिल होता है। जॉन का केवल सिनोप्टिक परंपरा को पढ़ने से हमें यह पता नहीं चल पाता। इसलिए यदि आप इसराइल और फिलिस्तीन की ओर उन्मुख हैं और जिस तरह से क्षेत्रों में भूमि का वितरण किया गया है, यदि नहीं तो हम तुरंत ध्यान देंगे कि यीशु निश्चित रूप से गलील से हैं और वह सामरिया में समय बिताते हैं, जो गलील और यहूदिया के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र है, और निश्चित रूप से इसकी अधिकांश संख्या यरूशलेम से मिलती जुलती है। यह मानते हुए कि आप भूमि के इस सामान्य लेआउट से परिचित हैं, हम मानचित्र को इसके किनारे पर पलटते हैं और एक पूर्वी अभिविन्यास रखते हैं। मुझे लगता है कि यह अभिविन्यास शायद कई मायनों में उत्तर दक्षिण मानचित्र के लिए बेहतर है, जिसका पश्चिमी दुनिया में हम में से लोग अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह उस वास्तविक तरीके से अधिक संबंधित है जिसके बारे में उन्होंने तब सोचा था, जिसमें भूमध्य सागर सबसे आगे है। तो हमारे यहाँ उत्तर में गलील का सागर है, जिसमें प्रकाश और छाया है। मुझे यकीन नहीं है कि आप इसे देख सकते हैं। गलील सागर, जॉन का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र के आसपास घटित होता है। हमारे पास जॉर्डन नदी घाटी है, जिसे यह अच्छा स्थलाकृतिक मानचित्र हमें एक भूवैज्ञानिक दरार के रूप में दिखाता है, जो हमें पृथ्वी के सबसे निचले स्थान मृत सागर, लगभग 1200 फीट समुद्र तल से 1300 फीट नीचे तक ले जाता है। नाजारेथ, जहां यीशु का जन्म सिनोप्टिक परंपरा में हुआ था और जॉन में भी इसका उल्लेख किया गया है, यहां गलील के इस क्षेत्र में गलील सागर के पश्चिम में है। यरूशलेम, निःसंदेह यहां नीचे दक्षिण में मुख्य पहाड़ी पर्वत श्रृंखला पर है जो जॉर्डन घाटी से निकलती है। उस दृष्टिकोण से यहां समुद्र तल से 2700 फीट या उससे ऊपर, समुद्र तल से 1200 से 1300 फीट नीचे है। तो यहां 15 मील की दूरी कुछ हजार फीट ऊपर आकर काफी हो गई है। यह काफी कठिन यात्रा है। उस क्षेत्र तक पैदल चलने या गधे की सवारी करने की कल्पना करें। तो हम नाजारेथ और यरूशलेम के बीच केवल 50 मील या उसके आसपास की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम में से जो लोग कम से कम पश्चिम में रहते हैं, जहां दुनिया में बड़े देश हैं और काफी जगह है, जब हम इजराइल जाते हैं तो सबसे पहले प्रभावित होते हैं कि यह कितना छोटा है। यरूशलेम के बारे में और अधिक सोचने पर जॉन के सुसमाचार में विभिन्न घटनाएं यरूशलेम में और उसके आसपास घटित होती हैं, जैसे कि यीशु ने बेथेस्डा के पूल में लकवे के रोगी को ठीक किया था, जो संभवतः यहाँ मंदिर के उत्तर में है। सिलोम का तालाब यहाँ निचले शहर के दक्षिणी छोर पर है। टेंपल माउंट यही है। किला एंटोनिया, रोमन किला, यहाँ मंदिर के उत्तर पश्चिमी कोने पर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु का अंतिम भोज ऊपरी कमरे में हुआ था, जो आज उस स्थान पर है जिसे वे माउंट सियोन कहते हैं, जिसे बाइबल माउंट सियोन नहीं कहती है। बाइबल में माउंट सियोन यहाँ मंदिर के ठीक दक्षिण में डेविड का शहर है। बाद में माउंट सियोन इस क्षेत्र में पश्चिमी पहाड़ी पर लागू हो गया। जैतून का पहाड़ मोटे तौर पर उत्तर और दक्षिण का पर्वत है, जो पुराने शहर के पूर्व में स्थित है। मानचित्र से जैतून पर्वत के दूसरी ओर संभवतः बेथनी जहां थी, जहां यीशु ने लाजर और उसके परिवार के साथ समय बिताया था। गेटसेमेन का बगीचा पारंपरिक रूप से मंदिर के ठीक पूर्व में स्थित है। मेरा मानना है कि यही कहीं प्राचीन काल में भी स्थापित किया जा सकता है। यीशु को सूली पर कहां चढ़ाया गया था, इस पर बहुत बहस हुई। आज हमारे पास वह मकबरा है जिसे जनरल गॉर्डन ने सोचा था कि उन्होंने स्थापित किया है, जिसे वर्तमान दमिश्क गेट के उत्तर में गार्डन मकबरे में गॉर्डन कैलवरी कहा जाता है। जबकि प्राचीन काल में नगर की दीवार संभवतः यहीं आसपास नीचे थी, तो चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर शायद ऐसा स्थान नहीं है जिसे सभी प्रोटेस्टेंट पसंद करते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह परंपरा कि यह यीशु के दफनाने का स्थान है, तथाकथित गार्डन मकबरे में इस स्थल से संबंधित किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक ठोस है। यरूशलेम में यीशु की परंपरा का एक और हिस्सा वाया डोलोरोसा, दुख की किरण का मामला है, जिसके बाद पीलातुस द्वारा यीशु की निंदा की गई थी, जहां वह क्रूस पर चढ़ गया था। यदि आप आज यरूशलेम जाते हैं तो आप चल सकते हैं और क्रॉस के विभिन्न स्टेशनों को देख सकते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से नए नियम के समय से जोड़ा गया है, और वे आपको मूल रूप से यरूशलेम के फोर्ट्रेस एंटोनिया क्षेत्र से, पुराने टेंपल माउंट के उत्तर पश्चिमी कोने से, अनिवार्य रूप से पश्चिम और थोड़ा दक्षिण में चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर तक ले जाते हैं। इसके साथ कठिनाई यह है कि यह माना जाता है कि यीशु वास्तव में किले एंटोनिया में परीक्षण पर थे, जबकि वास्तव में यह अधिक संभावना हो सकती है कि पीलातुस से पहले यीशु का परीक्षण हेरोदेस के महल में था, जहां रोमन अनंतिम राज्यपालों को समय लगता था वे यरूशलेम आए, जो कि ठीक दक्षिण में है। आज इसके खंडहर यरूशलेम में वर्तमान जाफा गेट के ठीक दक्षिण में है। इसलिए आज अधिकांश लोगों को यह अधिक संभावना प्रतीत होती है कि पीलातुस से पहले यीशु का समय हेरोदेस के महल के क्षेत्र में रहा होगा। इसलिए वाया डोलोरोसा, जो भी आप इसे कॉल करना चाहते हैं, वह संभवतः किसी ऐसी चीज की तुलना में उत्तर की ओर की यात्रा रही होगी। मूलतः एंटोनिया किले से पश्चिम की ओर वहां तक आया, तो यही वह जगह है जहां वर्तमान चर्च परंपरा संभवतः ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक संभावना से कुछ हद तक भिन्न है। तो टेंपल माउंट यहां है, ऊपरी कमरा पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में है, गेथसमेन का बगीचा पारंपरिक रूप से कहें तो जैतून के पेड़ों के साथ, यीशु के क्रूस पर चढ़ने और दफनाने का स्थान। खैर, यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हम निश्चित नहीं हैं। परंपरा शायद हमें गॉर्डन कलवरी की तुलना में चर्च ऑफ द होली सेपुल्चर से अधिक मदद करेगी। फिर केवल ऐतिहासिक भौगोलिक मामलों से पाठ्य मामलों की ओर बढ़ते हुए हमें जॉन का सुसमाचार कैसे मिला? हमारे पास न्यू टेस्टामेंट की सबसे प्रारंभिक पांडुलिपि है। जॉन के गॉस्पेल की तो बात ही छोड़ दें, वह पपीरस 52 है। इसे पपीरस 52 रेक्टो कहा जाता है। अगली स्लाइड पपीरस 52 वर्सो उस तरीके से संबंधित है जिसमें आप शीट पर रेशों को क्षैतिज रूप से देखते हैं। यह शीट के सामने की तरह है। पपीरस पर लिखना तब आसान होता है जब रेशे क्षैतिज रूप से चल रहे हों, बजाय इसके कि जब यह लंबवत चल रहा हो। तो यह जॉन अध्याय 18 छंद 31 से 33 से संबंधित एक छोटा सा अंश है और इसके कुछ अंश अभी भी उपलब्ध हैं। यहाँ अनुवाद में आप जिन हिस्सों को रेखांकित करते हुए देख रहे हैं वे हिस्से हैं जिनके लिए हमारे पास पांडुलिपि में वास्तविक ग्रीक शब्द हैं। उदाहरण के लिए यह कथन कि यहूदियों ने उससे कहा, हमारे लिए किसी को मार डालना उचित नहीं है। यहाँ ग्रीक में कोई भी शब्द है, ऑडेना ग्रीक में एक प्रकार का दोहरा नकारात्मक शब्द है जो अंग्रेजी अनुवाद में प्रदान नहीं किया गया है। वास्तव में ग्रीक में इसका मतलब कोई नहीं है। तो हमारे पास हिन्ना है क्रम में, तो यह शब्द लोगो शब्द होगा और निःसंदेह बाकी शब्द लोगो चला गया है। तो हमारे पास वह क्रम है और पांडुलिपि में हमारे पास बस इतना ही है। इसलिए यह बहुत दिलचस्प है कि कुछ लोग इस प्रकार की चीजों का अध्ययन करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं और हम में से बाकी लोगों को समझने में हमारी मदद करते हैं जो इस महत्वपूर्ण अनुशासन के प्रति उतने समर्पित नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है कि यह निर्धारित करना कितना आसान था कि इस छोटे से स्क्रैप में वास्तव में जॉन का सुसमाचार शामिल है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें है। यहाँ उसी खंडित सामग्री के साथ उसी स्क्रैप का पिछला भाग है, इस बार जॉन 18 छंद 37 और 38 से। ध्यान दें कि हमारे पास यहाँ ओडेना शब्द के केवल कुछ अक्षर हैं, पिलातुस की टिप्पणी के बारे में कुछ भी नहीं है। मुझे यीशु में कुछ भी गलत नहीं लगता। इसलिए चूंकि नए नियम की पांडुलिपियां हमारे लिए उपलब्ध हैं, हमारे पास अन्य भी हैं जो जॉन के सुसमाचार के संदर्भ में बहुत अधिक पूर्ण हैं। यहां आम युग के लगभग 200 से पेपिरस 66 में जॉन का सुसमाचार है। और आप में से जो लोग ग्रीक पढ़ सकते हैं वे यहां स्पष्ट रूप से शीर्षक देख सकते हैं, यूएंजेलियन काटा आयोनाई। और हमारे पास यहाँ जॉन के सुसमाचार की शुरुआत है, इन आर्क्स एनो लोगो। यही यह भाग जॉन अध्याय 12 का भाग है। उसने उन लोगों को दिया जो उस पर विश्वास करते थे, अनुग्रह अधिकार टेकना थेउ ईश्वर की संतान जनस्थाई बनने के लिए। एक चीज जो प्राचीन पांडुलिपियों ने की थी वह अब हमें नहीं दिखती, वह यह कि उनके पास पवित्र नाम नॉमिना सैक्रा लिखने के लिए काफी दिलचस्प शॉर्टहैंड दृष्टिकोण था। यह तू के संबंध कारक रूप का पहला और अंतिम अक्षर है। इसलिए स्थान बचाने के लिए और इन पवित्र नामों को उजागर करने के लिए वे पहला और आखिरी अक्षर लेते थे, इस मामले में थीटा और एप्सिलॉन, यह दिखाने के लिए शीर्ष पर एक पट्टी लगाते थे कि यह एक पवित्र नाम था, ये विशेष नाम। और इसके अलावा इस प्रक्रिया में थोड़ी जगह बचाएं, थोड़ा पपीरस बचाएं। आज हम ढेर सारा कागज फेंक देते हैं और दुर्भाग्य से लैंडफिल को उससे भर देते हैं। प्राचीन काल में यह काफी कीमती होता था। इसके बाद अगली पीढ़ी की ओर बढ़ते हुए मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं नए नियम की यूनानी पांडुलिपियां। अब हम कोडेक्स वेटिकन्स को देख रहे हैं जो शायद पिछली पांडुलिपि की तुलना में 150 साल या उससे अधिक बाद का है जिसे हम देख रहे थे। आप बता सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने यह पांडुलिपि बनाई वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास कलात्मक प्रयास के मामले में कुछ फुर्सत और कुछ कौशल था। तो यहीं से जॉन का सुसमाचार शुरू होता है और यहां हमारे पास थोड़ी सी सजावट है, वही शब्द एन आर्क्स एनो लोगो। जॉन का सुसमाचार इस प्रकार समाप्त होता है। जॉन के अनुसार दुनिया में वे सभी पुस्तकें नहीं समाहित हो सकती जो लिखी जानी चाहिए, जैसा कि जॉन के अनुसार जिस तरह से हमारा अंत होता है। तो अब तक लोग पांडुलिपियों की नकल करने में पेशेवर हैं, चाहे वे भिक्षु हो या शास्त्री या कुछ और शास्त्र भिक्षु, और वे इसका बहुत अधिक अलंकृत कार्य कर रहे हैं। हम नए नियम की पांडुलिपियों की पूरी अवधि को छोड़ देते हैं, जिसे लघु अवधि के रूप में जाना जाता है, जहां पांडुलिपियां और भी अधिक अलंकृत हो गईं और यहां तक कि अधिक सावधानी से तैयार की गईं, और मुद्रित युग की शुरुआत में 1455 के आसपास जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था और गुटेनबर्ग बाइबल सामने आई, और यहीं से जॉन का गॉस्पेल शुरू होता है इन शब्दों के साथ, इन प्रिंसिपियो एराट वर्बम। शुरुआत में यह शब्द लैटिन भाषा में था, और यहां इसे थोड़ा और ध्यान से देखने पर यह थोड़ा और करीब आता है। यहां यह फिर से है, वर्बम एराट अपोडेई, शब्द ईश्वर के साथ था, एट देई एराट वर्बम और ईश्वर शब्द था, 1455। तो प्रिंटिंग प्रेस के समय तक नए नियम की पांडुलिपियों की नकल हाथ से की जाती थी, और हमारे पास उनमें से हजारों की संख्या में हैं। आप कह सकते हैं, जब हम सभी विभिन्न विविधताओं के बारे में बात करते हैं, तो आप धन की शर्मिंदगी कह सकते हैं। पांडुलिपियां जॉन के गॉस्पेल में तीन ऐसे हैं जो शायद सबसे कुख्यात हैं, और शायद अन्य जिन्हें यहाँ जोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए यह बुद्धिमानी हो सकती है कि हम इन पांडुलिपियों के साथ पाठ्य प्रश्नों को प्रस्तुत करने में कुछ समय व्यतीत करें। सबसे पहले जॉन अध्याय 1 और पद 18 में, प्रस्तावना के अंत में, या जॉन के सुसमाचार की प्रस्तावना में हमारे पास यीशु के बारे में दिया गया अद्भुत कथन है, किसी ने कभी भी भगवान को नहीं देखा है, एकमात्र। अधिकांश संस्करणों में अगला शब्द है बेटा, दूसरों को भगवान मिलेगा। तो आप इसे कैसे पढ़ना पसंद करते हैं? किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा सिवाय एकमात्र ईश्वर के, या क्या आप एकमात्र पुत्र को पढ़ते हैं? आइए इसे दोनों तरीकों से आजमाएं। ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो स्वयं ईश्वर है और पिता के सबसे निकट संबंध में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। यह NIV से है। लेकिन यदि आप NIV को देख रहे हैं और कुछ संस्करण आपको पाठ्य वेरिएंट के साथ कुछ सीमांत रीडिंग देंगे, तो यह कहेगा कि किसी ने कभी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन एकमात्र भगवान जो स्वयं भगवान है और पिता के साथ निकटतम संबंध में है, उसने उसे ज्ञात कर दिया है। जब हम इस प्रश्न के लिए बाहरी साक्ष्यों को देखते हैं, तो हम इसकी तुलना आंतरिक साक्ष्यों से भी करते हैं। जब पाठ्य आलोचना की बात आती है, तो बाहरी साक्ष्य का संबंध पांडुलिपि परंपरा से होता है। प्राचीन पांडुलिपियां इस संबंध में क्या कहती हैं? वास्तव में उनके पास दोनों रीडिंग हैं। कुछ पांडुलिपियों में यूआईओएस शब्द है, कुछ में थियोस शब्द है। ग्रीक में दोनों चार अक्षर वाले शब्द हैं, अप्सिलॉन इओटा ओमिक्रॉन सिग्मा बनाम थीटा एप्सिलॉन ओमिक्रॉन सिग्मा। वे शीर्ष पर बार के साथ नामों को संक्षिप्त करते हैं, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। हम यहां दो अक्षरों के बारे में बात कर रहे हैं। पांडुलिपि में या तो अप्सिलॉन सिग्मा कहा गया होगा या थीटा सिग्मा कहा गया होगा। तो आपका प्रश्न ग्रीक में एक अक्षर से संबंधित है, क्या विचाराधीन अक्षर अप्सिलॉन या थीटा था? यूआईओस या थियोस का संक्षिप्त रूप अप्सिलॉन सिग्मा या थीटा सिग्मा है। बाह्य साक्ष्यों के संदर्भ में हमारे पास जो पांडुलिपियां हैं, उनमें अधिक प्राचीन पांडुलिपियों में आमतौर पर केवल ईश्वर वाक्यांश है, वहां थाओस शब्द है। हाल की पांडुलिपियों में, हालांकि उनमें से कई हैं, छोटी पांडुलिपियों में आमतौर पर भगवान के बजाय पुत्र पढ़ा जाता है। पाठ्य आलोचक भी इन पाठनों के बारे में सवाल उठाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि जिसे वे आंतरिक साक्ष्य कहते हैं, उसके संदर्भ में कौन सा अधिक मौलिक था। सवाल यह होगा कि जॉन ने संभवतः क्या लिखा होगा, और यदि जॉन ने संभवतः एक चीज लिखी होती, तो क्या इससे यह स्पष्ट होता कि हमें ये अन्य पाठन कैसे प्राप्त हुए? तो दो बातें, उसकी अन्यत्र प्रवृत्तियों को देखते हुए सबसे अधिक संभावना क्या लिखी गई होगी, और कौन सा पाठन अन्य पाठन की उत्पत्ति को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। तो हम जानते हैं कि जॉन ने एक पत्नीक एकमात्र शब्दावली का प्रयोग किया है। कुछ अनुवादों में इसकी उत्पत्ति केवल जॉन अध्याय 3:16 जैसे ग्रंथों में पुत्र शब्द से हुई है। मुझे लगता है कि एक जॉन में भी यह एकमात्र समय होगा जब वाक्यांश एकनिष्ठ थाओस एक और केवल ईश्वर घटित होता है। तो आप कहते हैं ठीक है, तब इसकी पूरी संभावना होगी कि उसने एक और इकलौता बेटा लिखा होगा। खैर, शायद इस तरह से सोचने पर यह सच है, लेकिन किसने जानबूझकर एक और एकमात्र बेटे को एक और एकमात्र भगवान में बदल दिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ही सामान्य जोहानिन अभिव्यक्ति है। उस संबंध में केवल और केवल भगवान ही बेहतर बताते हैं कि किसी ने ऐसा क्यों कहा होगा। ठीक है, यह थोड़ा अजीब है, यह असामान्य है, किसी ने मिसकॉपी कर ली होगी। आइए थीटा शब्द थीटा अक्षर को वापस एप्सिलॉन में बदल दे ताकि हमारा एक और इकलौता बेटा हो। तो इस संबंध में केवल और केवल भगवान ही पढ़ने वाले के इकलौते बेटे के उत्पन्न होने को बेहतर ढंग से समझाते हैं यदि हमने जानबूझकर बदलाव किया हो। लेकिन इस बात की भी संभावना हमेशा रहती है कि जो हुआ वह अनजाने में हुआ हो। एक मुंशी जो अपनी ग्रीक भाषा इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था, या मुझे नहीं पता, शायद आधा सो गया था क्योंकि उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए बहुत अधिक खा लिया था, या जो कुछ भी हो सकता था उसने शायद अनजाने में इसे उड़ा दिया था और थीटा सिग्मा के बजाय एप्सिलॉन सिग्मा लिखा था, या विपरीतता से। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह वे दोनों यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में बहुत उच्च तरीके से बोलते हैं, जो जॉन के उच्च धर्मशास्त्र के अनुरूप है। यदि हम वैकल्पिक पाठन को स्वीकार करते हैं कि पाठ वास्तव में एक और केवल ईश्वर कहता है, तो शायद हमें थोड़ा अलग ढंग से विराम चिन्ह भी लगाना चाहिए। तो हम कविता पढ़ सकते हैं, किसी ने भी भगवान को कभी नहीं देखा है, लेकिन एकमात्र भगवान जो स्वयं भगवान है और पिता के साथ निकटतम संबंध में है, उसने उसे ज्ञात कराया है। आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं, बस इस बात से अवगत रहें कि यह एक चर्चा और बहस है और आप भविष्य में इस पर और अधिक गहराई से विचार कर सकते हैं। जॉन के सुसमाचार में एक और दिलचस्प पाठ्य संस्करण जॉन अध्याय 5 में बेथेस्डा के पूल में आदमी के उपचार के साथ मिलता है। उस समय एक विचार चल रहा था, जाहिर है एक स्वर्गदूत पूल के पानी को हिलाने में सक्रिय था और जब पूल को इस तरह से हिलाया जाता था तो पानी में बुलबुले होते थे या लहरें होती थीं या जो भी हो, वह पहला था जो व्यक्ति प्रवेश करने में सक्षम था वह चंगा होने वाला था। तो जब आप कहानी का वृत्तांत पढ़ेंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा। कुछ समय बाद यीशु यहूदी त्योहारों में से एक के लिए यरूशलेम गए। अब यरूशलेम में भेड़ द्वार के पास एक तालाब है जिसे अरामी भाषा में बेथेस्डा कहा जाता है, जो 5 ढके हुए स्तंभों से घिरा हुआ है। यहाँ बड़ी संख्या में अशक्त, अंधे, लंगड़े, लकवाग्रस्त लोग रहते थे। NIV में, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, और अधिकांश वर्तमान अंग्रेजी संस्करणों में यह वहाँ से श्लोक 5 पर चला जाएगा। जो वहाँ था वह 38 वर्षों से अमान्य था, लेकिन इस अनुच्छेद का एक लंबा वाचन है जिसे आप किंग जेम्स संस्करण में देखेंगे, जिसमें पद 4 में कुछ अतिरिक्त सामग्री है। यहाँ बड़ी संख्या में विकलांग लोग, अंधे, लंगड़े, लकवाग्रस्त लोग रहते थे। यहाँ अतिरिक्त भाग है, और वे जल के बढ़ने की प्रतीक्षा करने लगे। समय समय पर प्रभु का एक दूत नीचे आता था और पानी को हिलाता था। इस तरह की गड़बड़ी के बाद जो सबसे पहले तालाब में जाएगा उसकी जो भी बीमारी होगी वह ठीक हो जाएगी। वहाँ एक जो 38 वर्ष से अशक्त था, यीशु ने उसे पड़ा देखा और जान लिया कि वह बहुत दिन से इसी हालत में है, और उससे पूछा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? श्रीमान, अशक्त ने कहा, पानी हिलने पर मुझे कुंड में उतरने में मदद करने वाला कोई नहीं है। जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तभी कोई मुझसे आगे निकल गया। तो सवाल यह है कि क्या देवदूत द्वारा पानी को हिलाने की यह बात कुछ ऐसी थी जो वास्तव में सच थी और वास्तव में घटित हो रही थी? क्या यह सिर्फ एक लोकप्रिय पौराणिक कथा, एक लोकप्रिय कहानी, एक विचार था जो लोगों के पास था? आखिरकार वे ठीक होने की जो भी आशा रखते हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका यह लोकप्रिय दृष्टिकोण था कि स्वर्गदूत इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसलिए जब हम इस पाठ को देखते हैं तो क्या हमारे पास श्लोक 3 के अंत में श्लोक 4 में विस्तार के साथ यह लंबा पाठ है, फिर से बाहरी साक्ष्य के दृष्टिकोण से कम पांडुलिपियां हैं जिनमें छोटा पाठ है जो कि नहीं है। इसमें देवदूत द्वारा पानी हिलाने का जिक्र है लेकिन ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनमें पाठ पढ़ा जा सकता है। लेकिन जिन पांडुलिपियों में पढ़ने को मिलता है वे उतनी प्राचीन नहीं हैं। इसलिए हमारे पास कम और अधिक प्राचीन पांडुलिपियां हैं जो लंबे समय तक पढ़ने को छोड़ देती हैं। हमारे पास और भी पांडुलिपियां हैं लेकिन वे काफी नवीनतम हैं जिनमें यह भी शामिल है। पाठ्य विद्वान आमतौर पर अधिक प्राचीन साक्ष्य या अन्य बातों पर विचार करना पसंद करते हैं। आंतरिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि हम खुद से यह सवाल पूछना चाहेंगे कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा हिस्सा जो यहाँ कई शब्दों के संदर्भ में, जैसे कि यह संपूर्ण पाठ के आगे बढ़ने का इंतजार कैसे करेगा। समय समय पर पानी और प्रभु के दूत नीचे आते और पानी को हिलाते। प्रत्येक गड़बड़ी के बाद जो सबसे पहले तालाब में जाएगा उसकी जो भी बीमारी होगी वह ठीक हो जाएगी। इतना बड़ा कुछ अनजाने में पाठ से बाहर नहीं हुआ होगा, नहीं इसे किसी अनजाने तरीके से जोड़ा गया होगा। तो हम यहाँ कुछ ऐसा देख रहे हैं जो स्पष्ट रूप से काफी जानबूझकर किया गया था। तो फिर आंतरिक साक्ष्य के संदर्भ में हमें इसके एक दुर्घटना होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे या तो बाहर निकालना या अंदर डालना जानबूझकर किया गया है। यहाँ मुझे लगता है कि अब हम बाइबल धर्मशास्त्र के बारे में आंतरिक साक्ष्य के संदर्भ में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि हम इसे समझते हैं और भगवान अपने लोगों के साथ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्गदूतों का उपयोग कैसे करते हैं। आखिरकार इब्रानियों की किताब हमें बताती है, क्या वे सभी सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं जिन्हें उन लोगों की सेवा करने के लिए भेजा गया है जो मोक्ष के उत्तराधिकारी होंगे? तो हम जो जानते हैं कि धर्म ग्रंथ के बाकी हिस्सों में भगवान द्वारा स्वर्गदूतों का उपयोग किस तरह किया जाता है, क्या हम यहाँ जॉन 5 श्लोक 4 में इस लंबे समय तक पढ़ने वाले संकलन में पढ़ते हैं? क्या यह ईश्वर के चरित्र और स्वर्गदूतों के लिए उसकी योजना के बारे में हम जो जानते हैं उसमें फिट बैठता है? मुझे लगता है कि चने ने स्वर्गदूतों को भगवान का गुप्त एजेंट कहा है। यह उनके लिए बहुत अच्छा शब्द था, है ना? तो क्या कोई दैवीय गुप्त एजेंट था जो पानी को हिलाता था और फिर बैठकर देखता था कि उन्हें ठीक करने के लिए पहले कौन प्रवेश कर सकता है? मुझे नहीं पता कि आप इस घटना को कैसे चित्रित करते हैं, लेकिन यह मुझे लगभग मोंटी पायथन स्केच की तरह चित्रित करता है। शायद आपने ब्रिटिश कॉमेडी मंडली मोंटी पायथन के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी हास्यास्पद, पागलपन भरी चीजें की और मुझे यह लगभग वैसा ही लगता है जैसे वे करते होंगे। सच कहूँ तो मुझे आपसे यह कहना होगा कि पहले शर्माते हुए मुझे यह उस तरह नहीं लगता जिस तरह से भगवान बाइबल में स्वर्गदूतों के साथ काम करते हैं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में ईश्वर द्वारा संचालित करने का एक क्रूर तरीका होगा, केवल उस व्यक्ति को उपचार प्रदान करना जो किसी तरह या किसी अन्य तरीके से खुद को पूल में हेरफेर करने का प्रबंधन कर सकता है। वहां मौजूद बाकी सभी गरीब अभागे लोग जो ठीक होने की कोशिश कर रहे थे निराश होंगे, क्योंकि वे उतनी तेजी से पूल में नहीं उतर सकते थे जितनी जल्दी दूसरे व्यक्ति ने किया। तो मेरे लिए यह आंतरिक परीक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आंतरिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से यह वास्तव में वही है जो ईश्वर अपने वचन में लिखना चाहता होगा। तो यह संभव है कि यह कुछ सीमांत नोट का मामला रहा होगा जो बाद में जोड़ा गया था। कुछ लेखक जो इसे लिख रहे थे, उन्होंने मार्जिन में इस आशय का एक नोट लिखा कि यही कारण है कि वे इंतजार कर रहे थे। उनके पास यह लोकप्रिय अंधविश्वास था। उन्होंने यही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानूंगा कि यह मूल रूप से जॉन के सुसमाचार का हिस्सा है, क्योंकि यह मेरे लिए धार्मिक गंध परीक्षण पास नहीं करता है। आप उस संबंध में भिन्न हो सकते हैं। हम यहां हठधर्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको इन मुद्दों के बारे में सोचने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां जॉन में पाठ्य मुद्दों में से एक और है जिसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी जब आप अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे होंगे। शायद जॉन में सबसे बड़ा मुद्दा, पाठ्य मुद्दा, जॉन अध्याय 7 में है, 7 में अंतिम कविता, फिर अध्याय 8 के पहले 11 छंद। उस महिला की कहानी जिसे व्यभिचार के कार्य में ले जाया गया था और उसे परेशानी में डालने के बहाने यीशु के पास लाया गया था, उससे कुछ ऐसा कहने के लिए कहा गया था जो विवादास्पद होगा, शायद मूसा का खंडन करने के लिए, उससे कुछ कहने के लिए, उसे पाने के लिए गहरे संकट में। इसलिए जॉन 7:53 से 8:11 को अक्सर पेरिकोप दे एडल्टरर कहा जाता है। यह व्यभिचारिणी के पेरिकोप के लिए लैटिन है और आप पूर्वसर्ग डी को निकाल सकते हैं, इसे जनन मामले, व्यभिचार में डाल सकते हैं। आपके पास वही चीज है, व्यभिचारी महिला के बारे में पेरिकोप। तो बाहरी गवाही के दृष्टिकोण से एक बार फिर दूसरा श्लोक पहले के समान अधिक प्राचीन पांडुलिपियों में यह खंड शामिल नहीं है। कई पांडुलिपियों में यह शामिल है, लेकिन वे पांडुलिपियां तुलनात्मक रूप से बहुत नवीनतम हैं। वे पांडुलिपियां हैं जो अधिकृत संस्करण, उस समय किंग जेम्स संस्करण तथाकथित टेक्सास रिसेप्टस के लिए उपलब्ध थीं। तो उन अपेक्षाकृत कुछ पांडुलिपियों, अपेक्षाकृत बाद की पांडुलिपियों में यह था, इसलिए यह किंग जेम्स संस्करण में शामिल हो गया। हालांकि पेरिकोप दृश्य अधिक प्राचीन पांडुलिपियों में नहीं पाया जाता है जो अधिकांश भाग के लिए उपलब्ध हैं, इसलिए कई विद्वान बाहरी साक्ष्य के दृष्टिकोण से पढ़ने की प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं। बाहरी साक्ष्य के बारे में एक और बात जो इस पेरिकोप के बारे में दिलचस्प है वह यह है कि कुछ पांडुलिपियों में इसे जॉन के सुसमाचार में अन्य स्थानों पर डाला गया है। कुछ पांडुलिपियों में इसे ल्यूक के सुसमाचार में अन्य स्थानों पर डाला गया है। यह कुछ मायनों में एक प्रकार का तैरता हुआ दृश्य है जो पांडुलिपि परंपरा में 3 या 4 विभिन्न स्थानों पर दिखाई देता है। इसके अलावा हम इसे अधिकांश पांडुलिपियों में पाते हैं जो यहां जॉन 7 और जॉन 8 में हैं। एक और दिलचस्प बाहरी साक्ष्य के दृष्टिकोण से पांडुलिपि के बारे में बात यह है कि कई पांडुलिपियों में इसे हाशिए पर अंकित किया गया है। उन्हें प्राचीन काल में एक विवादित वाचन के हाशिए पर ओबिलिस्क लगाए गए थे और कुछ पांडुलिपियों में जो वाचन है उसमें इसे शामिल किया गया है, लेकिन इसे चिह्नित किया गया है। इसलिए एक पाठक की तरह यहां सावधान रहें, यह वास्तविक सौदा नहीं हो सकता है। आंतरिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से यहां कई अनोखे शब्द हैं जो केवल जॉन के सुसमाचार में पाए जाते हैं और कुछ चीजों का शब्दांकन इस तरह से किया गया है कि लोगों को लगता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे जॉन के मूल लेखक ने लिखा होगा। इन विशेष शब्दों का उपयोग करते हुए इस विशेष तरीके से मेरे विचार से पेरिकोप के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह मूल रूप से जॉन के सुसमाचार का हिस्सा नहीं था, वह तरीका है जिससे यह कहानी के रास्ते में आता है। यदि आप जॉन 7 से जॉन 8 तक की कहानी पढ़ते हैं तो यह यीशु के मंत्रालय में एक बहुत उथल पुथल भरा समय है। वह यरूशलेम में आया है और वह बूथ के टैबरनेकल सुक्कोट की दावत के लिए वहां गया है और इसलिए उसने पढ़ाना शुरू कर दिया है और लोग हर तरह से जा रहे हैं और उसे जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वह मसीहा है, कुछ नहीं, कुछ सोचते हैं कि वह योग्य नहीं है क्योंकि वह बेथलेहम से नहीं है। और जब आप जॉन अध्याय 7 में कहानी पढ़ते हैं तो ये सभी मसीहा संबंधी राय चारों ओर तैरती हैं। इसलिए अध्याय 7 धार्मिक की ओर ले जाता है। नेता यीशु को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं ताकि वे उसे अंदर ला सकें और उसकी जांच कर सकें, लेकिन जिस गिरफ्तारी दल को उन्होंने भेजा है वह वास्तव में उसे गिरफ्तार नहीं करता है। वास्तव में जो लोग उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजे गए थे वे स्पष्ट रूप से उसकी सभी शिक्षाओं में इतने कुशल थे कि वे कार्य को अंजाम देने में असमर्थ थे। तो वह कहानी 745 से शुरू होती है। मंदिर के रक्षक मुख्य पुजारियों और फरीसियों के पास वापस गए जिन्होंने उनसे पूछा, आप उसे अंदर क्यों नहीं लाए? गार्ड ने उत्तर दिया, यह आदमी जिस तरह बोलता है उस तरह कभी कोई नहीं बोला। फरीसियों ने उत्तर दिया, तुम्हारा मतलब है कि उसने तुम्हें भी धोखा दिया है? क्या फरीसियों के शासकों में से किसी ने उस पर विश्वास किया है? नहीं, यह भीड़ जो कानून के बारे में कुछ नहीं जानती उन पर लानत है। तो अब हमारा मित्र निकोडेमस 7:50 पर फिर से प्रकट होता है। निकोडेमस ने, जो पहले यीशु के पास गया था और जो उन्हीं में से एक था, पूछा, क्या हमारा कानून किसी व्यक्ति की बात सुने बिना कि वह क्या कर रहा है उसे दोषी ठहराता है? उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुम भी गलील से हो? इस पर गौर करो, तुम पाओगे कि गलील से कोई भविष्यवक्ता नहीं उठता। अब यदि हम उससे सीधे अध्याय 8:12 की ओर बढ़ते हैं तो हम वापस यीशु की ओर मुड़ते हैं। यीशु ने फिर लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, उसके पास जीवन की रोशनी होगी। फरीसियों ने उसे चुनौती दी, 8:13 यहां तू अपने ही गवाह के रूप में उपस्थित हो रहा है, तेरी गवाही मान्य नहीं है। जब आप पाठ को 7:52 से लेकर 8:12 तक इस प्रकार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पाठ का अर्थ समझ में आता है। हालांकि जब आप इसे 7:53 से अध्याय 8:11 सहित पढ़ते हैं तो यह एक तरह से आगे पीछे फ्लॉप होता हुआ प्रतीत होता है, जो काफी अजीब है। तो यह इस प्रकार होगा, यदि हम व्यभिचारिणी के बारे में दृश्य शामिल करें। निकोडेमस ने अपनी टिप्पणी की, क्या हमें कम से कम, आप जानते हैं, निर्णय लेने से पहले यह पता नहीं लगाना चाहिए कि वह क्या कर रहा है? उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुम भी गलील से हो? इस पर गौर करो, तुम पाओगे कि कोई नबी गलील से नहीं आता। तब वे सब अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। भोर में वह फिर से मंदिर के दरबार में प्रकट हुए। तो यह वही है, उनके घर जाने से थोड़ा अचानक बदलाव, लेकिन यीशु जैतून के पहाड़ पर जा रहे हैं। फिर वह अगले दिन फिर प्रकट होता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीजें एक साथ घटित हो रही हैं और पाठ की साहित्यिक एकता नष्ट होती दिख रही है। अंत में ऐसी ही बात, क्योंकि यीशु नेताओं से स्त्री के बारे में और स्त्री से नेताओं के बारे में बात कर रहे थे। जब आप पेरिकोप पढ़ते हैं, जैसा कि आपको याद है, वह जमीन पर कुछ अलग अलग समय पर लिख रहा है और वह अध्याय 8:7 में निर्णायक टिप्पणी करता है, तुम में से जो निष्पाप हो वह सबसे पहले पत्थर मारे। और फिर वह जमीन पर फिर से लिखता है, लोग धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगते हैं और चले जाते हैं, इसलिए केवल यीशु और महिला ही बचे रहते हैं। वे वहां केवल दो लोग हैं, बाकी सभी लोग अध्याय 8 श्लोक 9 के अनुसार चले गए हैं। इस बिंदु पर यीशु सीधे हो जाते हैं और महिला से कहते हैं, वे कहाँ हैं? क्या किसी ने आपकी निंदा नहीं की? वह कहती है, कोई नहीं सर। तब न तो मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूँ, वह कहता है, जाओ और अपने पाप का जीवन छोड़ दो। पद 12, जब यीशु ने फिर लोगों से बात की तो क्या लोग? सभी लोग चले गए, अब वहाँ कोई नहीं है, केवल यीशु और वह महिला। तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अचानक बदलाव हुआ है, न केवल 752 से पेरिकोप में, बल्कि जैसे ही आप इस पेरिकोप से बाहर निकलकर अध्याय 8 श्लोक 11 से शेष सुसमाचार में अध्याय 8 श्लोक 12 में आते हैं। तो इस कारण से बाहरी और आंतरिक साक्ष्य समान रूप से, मुझे लगता है कि अधिकांश विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि 753 से 811 वास्तव में जॉन के सुसमाचार के इस हिस्से में फिट नहीं बैठता है। यह मूल रूप से पाठ का हिस्सा नहीं था। तो इस संबंध में यह उस पेरिकोप की तरह है जिसे हमने अध्याय 5 छंद 3 और 4 में देखा था। हालांकि यह यीशु की अन्य शिक्षाओं के साथ कैसे मेल खाता है, इस बारे में सोचने के व्यापक अर्थ में आंतरिक साक्ष्य यहाँ जॉन 7 और में काफी भिन्न है। 8 जैसा कि यह अध्याय 5 में है। बहुत से लोग जब जॉन 7 और 8 पढ़ते हैं और व्यभिचार में ली गई महिला की कहानी पढ़ते हैं, तो वे निष्कर्ष निकालते हैं कि यीशु वास्तव में यहाँ अपने जैसा लग रहा था। यह उस प्रकार की चीज है जो यीशु के धर्मशास्त्र से मेल खाती है और फिट बैठती है, जैसा कि हम उसे धर्मग्रंथ में कहीं और जानते हैं। वह व्यक्ति नहीं जो पाप से समझौता करेगा, बल्कि वह व्यक्ति जो पापियों के प्रति दयालु है, वह व्यक्ति जो धार्मिक लोगों, धार्मिक नेताओं के प्रति अपनी टिप्पणियों में सबसे कठोर है, लेकिन पकड़े गए आम लोगों के प्रति काफी दयालु और सौम्य है पाप में, परंतु जो उससे विमुख होना चाहते हैं। तो महिला के लिए यीशु के ये अंतिम शब्द, जैसे किसी ने तुम्हारी निंदा की नहीं तो मैंने भी नहीं, अब जाओ और पाप का अपना जीवन छोड़ दो, एकदम सही मिश्रण, सही मिश्रण संतुलन का सही तरीका लगता है। न्याय और अनुग्रह उच्च मानक बनाए रखने का सही तरीका है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना भी है जो पाप से दूर जाने को तैयार है। इस कारण से और इस तथ्य से कि बाहरी साक्ष्य के अनुसार यह मार्ग नए नियम की अन्य पुस्तकों और कुछ प्राचीन पांडुलिपियों में पाया जाता है, कई लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह मार्ग मूल रूप से एक वास्तविक परंपरा से जुड़ा हुआ था यीशु के दिनों में, कि यह सचमुच हुआ। तो फिर यह पेरिकोप एक ऐसा पाठ होगा जो यीशु की अन्य परंपराओं के साथ प्रारंभिक चर्च में प्रसारित हुआ है, वास्तव में नए नियम के मूल लेखन में खुद को कभी नहीं पाता है, लेकिन अंततः खुद को दूसरी या तीसरी पीढ़ी की तरह पाता है। नए नियम की पांडुलिपियों की नकल। इस कारण से यह संभव है कि यह ऐतिहासिक यीशु के सत्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो मूल रूप से जॉन के सुसमाचार में घटित हुआ हो। तो आप में से जो लोग अभी वीडियो सुन रहे हैं, 16 स्क्रिप्टुरा के बहुत मजबूत सिद्धांत के साथ वीडियो देख रहे हैं, उन्हें संदेह हो सकता है कि आपको कभी भी चर्च में इस मार्ग को पढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं उससे थोड़ा अधिक उदार होता और परिच्छेद को वैसे ही पढ़ाता, साथ ही यह भी जानता कि यह मूल रूप से जॉन के सुसमाचार में नहीं था, जैसा कि हम सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो यह जॉन के सुसमाचार और उसके परिचय पर हमारा दूसरा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम जॉन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं, हमें यह कैसे मिला, किताब की कुछ भौगोलिक विशेषताएं और जिस तरह से किताब हमारे पास आई, कुछ पाठ्य समस्याओं के बारे में भी। आशा है आपने इसका आनंद लिया होगा। हम जल्द ही आपसे जॉन अध्याय 1 के लिए मिलेंगे। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह सत्र संख्या 2 है, जॉन के सुसमाचार का परिचय भाग दो ऐतिहासिक और पाठ्य सामग्री।